जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोद नंदन व्रज जन रंजन, यशोद नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी।
Everybody chant together loudly.
जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, निताई गोरा हरिबोल हरिबोल हरिबोल, निताई गोरा हरिबोल श्रील प्रभुपाद की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, मिथाई गौरचंद्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। Thank you very much, everybody, for coming today evening. Hare Krishna. Human life is meant to connect with the Lord. And whichever way, whatever way we can connect with the Lord is our good fortune. We have eyes, we have ears, we have tongue, we have nose, we have touch. Through these five senses we connect with the Lord. And through these five senses only we have an opportunity to connect with the Lord. That is why the Lord has given the holy name to us, so that we can very effectively connect with Him. The holy name, maybe they can go inside and play, no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Of all five senses, the ears are most important. That is why the Lord has come in the form of sound. And you will be very happy to know that the ability to hear remains till the last moment of life. Maybe the vision will go away, maybe the touching sensations will go away. Medically I am talking about. But even medically it is proved that the ability to hear is there till last moment. And that is why Lord has chosen to come in the form of holy name, the sound vibration. Kali Kala Nama Rupe Krishna Avatar. It's a very scientific thing. It's not just emotional or sentimental or beliefs. It's not like that. Even if a person is in unconscious condition, what do you think? He is able to hear or not able to hear? Yes. How many of you believe that he is able to hear? He is not able to respond. That does not mean he is not able to hear. He wants to respond, but he cannot respond because his machine is in bad condition. So Lord is very merciful and Lord is very sensitive to our conditions. So in Kali Yuga there is nothing like yajna or lot of knowledge or brahminical activities or deity worship. Everything is there, but what we see as best deity worship is a token of deity worship, what has been done in other yugas. Only token. Only a minimized version. Whatever yajnas we see in marriages and Gura Pravesh and Namakarana and all these things are only a token, and that to compromise situation. Discounted situation. And somebody does it nicely, we feel, oh, how wonderful priest he is. He knows so many things. But the priest also knows that this is only a smallest possible token of other ages. So in such conditions, when you cannot perform yajna, you cannot perform deity worship, you cannot perform dhyana, impossible to meditate, impossible to give up everything and go to forest for 60,000 years. Life is only less than 100 years. What is the question of thousands of years? All this is bygone days. In this day and age, we have to remain where we are, do what we are doing. Whatever liking, profession, degree, work we have, we keep doing that work. Only add the holy name in our life. Incorporate the holy name in such a way that it becomes part of our life, and then it becomes our life itself. Initially it will become part of our life, but later on it should become our life itself. Our life should become the holy name. and rest things should go just parallelly, family and duties and other business that we have. And to do all that, Lord has come in the form of holy name. Today we will talk about Bali Maharaj actually. Huh? Who is Bali Maharaj's guru? Who is Mahabali's guru? Shukracharya. Because Shukracharya is a guru of demons, Daitya guru. And Bali is one of the Daityas. Daitaraj Bali, son of Diti. He has made a very significant statement. He said that all the yajnas that we perform, there are many mistakes. There will be mistakes in the ingredients, there will be mistakes in the process, there will be mistakes in the pronunciation of mantras, there will be mistakes in the arrangement. So many things are there. If you pronounce some mantra in a different manner, it means something else. Even in Malayali and Marathi and Hindi also, some things are said in different tone, it means something else. What to speak of Sanskrit? So he said there are many follies in the yajnas. But all this is, who is saying this is important? He is saying that Daityaraj Mahabali's Daitya Guru Shukracharya is telling this. He is saying that when you chant the holy name of the Supreme Lord Vishnu, all the deficiencies of the yajnas can be nullified and the yajna will be considered as complete. Very significant. He has told this in Satyayuga, not now. He has not told in the age of Kali, where the holy name is the Yuga Dharma. He has not told that time. He has told this in Satyayuga. Whether Yuga Dharma is holy name in Kali Yuga or not, or whether it is not Yuga Dharma in Satyayuga, Treta Yuga or Dwapar Yuga or not, holy name remains as powerful, the method to connect with the Lord, as it is in Kali Yuga, in other Yugas also. Only thing is, it takes prominence in Kali Yuga, because everything else becomes a failure. What could have been done, what can be done, what is done in other Yugas becomes a failure in Kali Yuga. That's why this process becomes prominent. It just rises up. Like butter is always there in the milk, but when you churn, it comes up. It's not there, it's there only. But in the process of churning, it comes up. Like that, when everything fails, all the other religious methods to attain the Lord, then holy name becomes very prominent. But it is as prominent as that in earlier ages also. A lot of importance is there, and we have to meditate on this point. Who is saying this, and when he is saying, then why he is saying this, and what he is saying. So chanting the holy name of the Lord is our service, seva. We do chanting to perform seva, and we perform seva to Krishna to be able to chant nicely. It goes like this. Acha, hum log Hindi bolna hai kya? Okay, bhul gaya main. Okay. Haan, haan, theek hai, theek hai. Theek hai, theek hai. तो भगवान का नाम जो है ना, वो हम जप करते हैं ताकि हम भगवान की सेवा अच्छी तरह कर सकें. और भगवान की सेवा इसलिए करते हैं कि भगवान का नाम अच्छी तरह जप कर सकें. क्योंकि हम 24 आवर्स जप करने जैसे अभी महात्मा नहीं बने हैं. एक जगह बैठ के बिना माइंड डिस्टर्ब होते हुए 24 आवर्स एकाग्रता से मन लगा के मग्न होकर, ऐसे भगवान का नाम हम भी जप करने इतने योग्य नहीं हो गए हम. इसलिए कुछ समय जप करते हैं और बाकी समय हमारी इंद्रियों को एंगेज करने के लिए हम सेवा करते हैं. मंदिर जाते हैं, उधर माला बनाते हैं, उधर कुछ झाड़ू लगाते हैं, उधर प्रसाद देते हैं, प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद के बाद वाइंड अप करते हैं, क्लीन करते हैं, आरती करते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं. वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, 64 एक्टिविटीज बताया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा. उसमें से 40-50 एक्टिविटी तो मॉर्निंग प्रोग्राम में हो जाती है. मॉर्निंग प्रोग्राम में खाली आप गए, प्रसाद तक रहे वहाँ पर, तो रूप गोस्वामी कहते हैं 42 एक्टिविटीज़ हो जाते हैं उसके अंदर. प्रभुपाद जी ने ऐसा अरेंज किया है कि 42 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 64 एक्टिविटीज़ वो सुबह प्रोग्राम में हो जाते हैं. फिर बाद में पढ़ना है, बाद में और कुछ करना है, भगवान के लिए पैसे कमाना है, भगवान के लिए फंड रेजिंग करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत। किसी भी प्रकार से हमें हमेशा अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, और जब मन नहीं लगता है तो इंद्रियों को कृष्ण में लगाना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को कृष्ण में लगाने से मन भी अपने आप कृष्ण में लग जाता है। जैसे हमारे आंखें अगर कोई टीवी पे पिक्चर देख रही है तो अपने आप मन उस पिक्चर में लग जाता है ना। अगर कृष्ण की पिक्चर देख रहे हैं तो कृष्ण में मन लगेगा, अगर शाहरुख खान की देखेंगे तो शाहरुख खान की याद आएगी, और किसी की देखेंगे अमिताभ बच्चन की तो अमिताभ बच्चन की याद आएगी। इसका मतलब मन में अमिताभ बच्चन का विचार नहीं है, लेकिन आंखें अमिताभ बच्चन को देख रही हैं तो उसी का विचार आएगा, उसके वाइफ का विचार आएगा, उसके बच्चे का विचार आएगा, उसके बहू का विचार आएगा, उसके ग्रैंड डॉटर का विचार आएगा, है ना। उसी तरह से अगर मन नहीं लग रहा है कृष्ण में तो इंद्रियों को कृष्ण में लगाना चाहिए, तो अपने आप फिर मन भी कृष्ण में लगने लगता है। शुरू शुरू में लगेगा नहीं, भागेगा, लेकिन अगर विचार पूर्वक हम इंद्रियों को, आंखों को, हाथों हाथ को, पांव को, पांच ज्ञान इंद्रिय है ना हमारी, और पांच कर्मेंद्रिय है। पता है आप लोगों को कौन से ज्ञान इंद्रिय है, कौन से कर्मेंद्रिय है, कौन से ज्ञान इंद्रिय हमारे पास है? एक है आंखें, दूसरे है कान, तीसरे है जिह्वा, चौथा है नाक, और पांचवे है त्वचा, स्किन, हाँ, स्पर्श। ये पांच है ज्ञानेन्द्रिय जिसमें से ज्ञान प्राप्त होता है, और पांच है कर्मेंद्रिय। वो क्या है? एक है हाथ, दूसरे है पैर, तीसरे है कंठ, चौथा है स्टमक, और पांचवा है सेक्सुअल ऑर्गन। ये पांच कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं, ज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर हमारी इंद्रियां फिर कर्म करते हैं। ज्ञान क्या बोलता है? जलेबी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा आनंद आएगा, तो ये सुनने के बाद में जलेबी खाने की इच्छा होगी, फिर आप जाएंगे दुकान में, पैसे खरीदेंगे, खर्च करेंगे, जलेबी खरीद के लेके आएंगे, घर पे आके हाथ से मुंह में डालेंगे, जिह्वा से टेस्ट करेंगे और निगल जाएंगे उसको, है ना। सारे इंद्रियों को आपने लगा दिया, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भी, कि किसके लिए लगाया? खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद मिलना चाहिए, और सुना है कि जलेबी खाने से आनंद मिलता है, इसलिए आपने मेहनत किया है। ये चक्र है जीवन का पूरा, सुख मिलना चाहिए और दुख नहीं मिलना चाहिए। आप सोचिए, आप दिन भर क्या करते हो? आप दिन भर केवल एक ही प्रयास कर रहे हो कि आपको सुख मिलना चाहिए और आपको दुख नहीं मिलना चाहिए। इज दैट राइट? होल डे आप यही काम कर रहे हो, और ये सुख और दुख के चक्र में हमको भगवान को प्राप्त करना है। सुख चाहिए, इसमें कुछ पाप नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सुख प्राप्त करने का है, आत्मा का स्वभाव ही सच्चिदानंद है, आनंद मयोभ्यासात। तो सुख को प्राप्त करने की इच्छा होना, प्रवृत्ति होना, डिजायर होना, इसमें कोई पाप नहीं है। सुख प्राप्त करने का तरीका गलत हो सकता है और या सही हो सकता है, लेकिन सुख प्राप्त करना गलत नहीं है। हम लोग सुख गलत तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं या करते हैं, इसलिए हमें पाप लगता है। जब सुख को गलत तरीके से कोशिश करना करते हैं मिल प्राप्त करने की, तो पाप बन जाता है, और सुख अगर सही रास्ते से करेंगे, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो वो पुण्य बन जाता है। तो हमको पाप इकट्ठा करना है कि पुण्य इकट्ठा करना है? हमको पाप भी इकट्ठा करना है, पुण्य भी इकट्ठा नहीं करना है। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। बाकी जो धर्म है दुनिया में, जो कर्म कांड सिखाते हैं, विरक्ति सिखाते हैं, वो सब में यही जो बताया जाता है, पुण्य इकट्ठा करो, पुण्य इकट्ठा करो, अच्छा काम करो, अच्छा बोलो, किसी को दुख मत दो, सुख दो सबको, सबको कपड़े बांटो, जिसको कपड़े नहीं है, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट बांटो, ये सब जगह पढ़ाया जाता है। अच्छा रहो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए सब मॉरलिटी है, केवल नीति शास्त्र है, भक्ति इससे कहीं दूर है बहुत। दुनिया में आजकल जो मॉरलिटी की बात करता है उसी को बड़ा गुरु मानते हैं, लेकिन भगवान ने केवल मॉरलिटी की बात नहीं की है। भगवद गीता में जो अर्जुन को सिखाया, जो जंग युद्ध के बीच में खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसमें ऐसा नहीं बोला है सच बोलो, झूठ मत बोलो, अंधों को चश्मा दे दो, नंगे को कपड़ा दे दो, हाँ, विद्यार्थियों को पैसा नहीं दो, किताब बांटो, ऐसा नहीं बताया। बहुत ऊंची बात बताइए, भगवान के साथ जुड़ने की बात बताइए। माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करके युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, अपना सब कुछ छोड़ दो, स्वार्थ जो जिसके लिए आप लड़ने चाहते हो वो सब भूल जाओ। आप, आपके पत्नी का अपमान हुआ है, आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आपको राज्य नहीं मिला है, उन्होंने राज्य छीन लिया, आपको वनवास में भेज दिया, इतना अन्याय अत्याचार किया आपके ऊपर, सब भूल जाओ इस बात को। आप बार बार अपने पेटी पेटी उद्देश्यों को लेकर सामने मत आओ कि मेरा पत्नी का अपमान का क्या करूं मैं, मतलब छोड़ो उसको आप सब कुछ। सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये साइंस को भक्ति कहते हैं। तो हम ये बात बताना चाहते थे कि सुख और दुख जो है ना, पाप और पुण्य, ये दोनों हमको इकट्ठा नहीं करना है। क्योंकि हमारी मेन समस्या क्या है दुनिया की, हमारी मेन समस्या है कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, शरीर धारण करके बैठे हुए हैं और जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इस चक्र में फंसे हुए हैं। कितने लोगों को एक्सेप्ट है ये बात, सब लोगों को एक्सेप्ट है ना कि हमारी मेन समस्या, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छी सुंदर बीवी नहीं है, हमारा बच्चा फेल होता है एग्जाम में, ये हमारा मेन समस्या नहीं है। हमारा मेन समस्या है कि हम लोग शरीर धारण करके, दुख भरा शरीर धारण करके, बाय द वे दुख भरा जो दुखों का सागर है शरीर व्याधि मंदरम, ऐसा शरीर धारण करके हम यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ये हमारी मेन समस्या है, हमें मरना पड़ेगा एक दिन, मृत्यु आने वाली है निश्चित रूप से। कितना भी कोशिश करो, सुख प्राप्त करो, दुख प्राप्त करो, पाप इकट्ठा छोड़ दो, पुण्य इकट्ठा करो, ये सब करने पर भी मृत्यु आने वाली है। बहुत पुण्य, पहाड़ जैसे बड़े पुण्य इकट्ठा किए आपने, फिर मृत्यु होगी कि नहीं होगी, मृत्यु होगी, फिर क्या होगा, फिर हम लोग स्वर्ग जाएंगे। इतना पुण्य कमाया तो उसका उसका फल तो भोगना है ना, तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, भोग शरीर प्राप्त करेंगे। आप जानते हो भोग शरीर क्या होता है, भोग शरीर के अंदर वेदना नहीं होती है, पेन ही नहीं होता है, पेन का इंतजाम ही नहीं उसके अंदर, खाली आनंद का इंतजाम है, आनंद का नहीं सुख का इंतजाम है। आनंद एक ऊंचा कंसेप्ट है। और जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, वो यहाँ से शारजा से उड़ा और उसको जाना है न्यूयॉर्क, तो कितना देर तक आकाश में उड़ेगा वो, हाँ नहीं नहीं कितना देर तक उड़ सकेगा, जब तक उसमें ईंधन है तब तक। ईंधन खत्म हो गया तो आकाश में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, है क्या शारजा में है, आकाश में अमेरिका में है, एडवांस कंट्री में भी है क्या, नहीं है। किधर भी उड़ेगा विमान तो उसको जमीन पर आना पड़ेगा जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वैसे ही क्षणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, जैसे ही पुण्य का राशि, पुण्य का कलेक्शन समाप्त हो जाएगा भोग कर, है ना, आपने सारा भोग लिया, अप्सराओं को भोग लिया, नंदनवन के फूलों को भोग लिया, दिव्य भोजन को भोग लिया, ऐसा आनंद है वहाँ पर, ऐसा सुख है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इधर स्नान किया 15 मिनट में बदबू आता है पसीने से हमारे, 15 मिनट के अंदर, 6 घंटा हो गए तो मुँह में बदबू आती है, सो के उठे तो सब जगह बदबू आती है, शरीर से बाहर निकलता है उसमें बदबू आती है ना। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सुगंध ही सुगंध है। जैसे अभी यहाँ पर 25 लोग बैठे ना, तो 25 प्रकार की सुगंध यहाँ पर महकेगी अपने आप, हर एक आदमी का अपना एक सुगंध रहेगा, आदमी का, औरत का, बच्चे का, सबका। उसको कहते हैं भोग शरीर, उसमें सारे इंद्रियों को केवल भोग ही भोग है, आनंद ही आनंद है। बाय द वे सॉरी टू से, उसका बिगिनिंग और एंड भी है ना। अभी आप समझो 50,000 दिराम लेकर सिंगापुर गए, कितना नहीं रह सकते हैं, जब तक जेब में 50,000 है तब तक, और उसके एंड तक रह सकते ना आप वहाँ पर, थोड़ा जब बचेगा तो उसको लेके जाना पड़ेगा, कोई रास्ता में लगेगा ना वापस जाने के लिए भी, तो ऐसा नहीं कि सब 50,000 दिराम सारा ख़त्म करके फिर आपको निकलना है, तो रास्ते में क्या भूखे रहेंगे क्या, तो एक 500 दिराम रखना पड़ेगा आपको, वो बाय द वे ऑन द वे भी लगना लगेगा ना, कोई जूस पीऊँगा, कुछ ब्रेड खाऊँगा, सैंडविच खाऊँगा रास्ता में, घर में टैक्सी भी करूँगा, फिर मेरे घर पहुँचना है, फिर लेबर को भी, कुली को भी दूंगा, ऐसा है वो सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुण्य को भी इकट्ठा करके कुछ फायदा नहीं है, तो पुण्य भी टेम्पररी है, उसका फल भी टेम्पररी है, वो भी खत्म होता है। तो रियल साइंस क्या है, आद्यंतु वंतु कौंतेया नतेषु रमते बुधा, जिसकी शुरुआत है, हाँ ध्यान से सुनो आप, जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है उसमें बुद्धिमान व्यक्ति रुचि नहीं लेता, तो वो जानता है इसमें कुछ दम नहीं है, इसकी शुरुआत है और इसका एंड है। जलेबी खाएगा बहुत पसंद आएगा, एक खाएगा गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी इतना आनंद आएगा, और चाहिए, दो खाएगा फिर तीन खाएगा फिर चार खाएगा फिर बोलेगा बस अभी, तो होस्ट बोलेगा अरे एक और खा लो अभी, ये भी सबसे ज़्यादा गर्म और क्रिस्पी है, तो पांचवा खाएगा तो बोलेगा थक गया मैं, तो होस्ट बोलेगा अरे एक बार खा ही लो अभी, अब छठवा खाएगा लैटरिन भागेगा कि नहीं, नेक्स्ट डे वो भागेगा, अगर नहीं आज भागेगा तो पेट बिगड़ जाएगा उसका, दो दिन कुछ खा नहीं पाएगा उसके बाद में, तो क्या हो गया एक्चुअली, वही तो जलेबी थी वो, इतना आनंद दिया आपको जब भूखे थे आप, लेकिन एक के बाद वही जलेबी वही टाइप की वही स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की वही बेस्ट शॉप से आने वाली वही घी में बनाई हुई वही ऊंचा माल से बनाई हुई वही जलेबी जब पांचवी और छठवीं हो जाती है तो उसका सारा सुख जो है वो खत्म हो जाता है। वो जलेबी भी सुख खत्म नहीं हुआ है, जलेबी भी अभी तक है, आपके इंद्रियों का कैपेसिटी खत्म हो गई है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए हमको ना पाप इकट्ठा करना है ना पुण्य इकट्ठा करना है, तो क्या इकट्ठा करना है फिर, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक उन्नति इकट्ठा करना है, क्योंकि केवल आध्यात्मिक उन्नति करने से ही हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, पुण्य इकट्ठा करने से मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, पाप इकट्ठा करने से नरक में जाके दुख भोगते रहेंगे, नरक में कौन सा शरीर है, यातना शरीर बोलते हैं उसको, बॉडी ऑफ पेन्स, उधर ऊपर कैसा है, खाली सुख ही सुख का शरीर बनाया है, दुख का अनुभव नहीं होता है उसके अंदर, नीचे कैसा बनाया शरीर, सुख का अनुभव होगा ही नहीं उसके अंदर, आपको केवल दुखी दुखी का अनुभव होगा, दुख का ही अनुभव होगा, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना पेन रिसेप्टर्स, खाली पेन रिसेप्टर से भरा हुआ है शरीर, आप स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा नर्व एंडिंग्स नर्व टर्मिनस नर्व जंक्शन उसमें खाली पेन भोगने का ही इंतजाम प्रोग्रामिंग बना कर रखा है, केवल पेन ही पेन होगा आपको उधर, यातना शरीर बोलते हैं उसको, उधर भोग शरीर है और ये क्या है बीच वाला, ये मिक्सचर है दोनों का, लेकिन मिक्सचर में भी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है बहुत, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यह का शरीर में स्पेशलिटी क्या है, सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवडे, मतलब क्या, थोड़े सुख का परसेप्शन दिया है बहुत सारा दुख का परसेप्शन दिया है, और थोड़ा सुख कमाने के लिए बहुत सारा दुख पहले उठाना पड़ेगा फिर थोड़ा सुख मिलेगा, वो अच्छा लगेगा आपको तो दूसरा बार वही सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा। जैसे बच्चा आपको अच्छा लगता है 9 महीने तक कष्ट उठाना पड़ेगा, फिर डिलीवरी है फिर ये है, और दूसरा बच्चा चाहिए तो वापस उतना ही कष्ट उठाना पड़ेगा। बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना आपको अच्छा लगता है उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितना घंटा काम करते हैं आप और खाना कितने मिनट खाते हैं, 15 मिनट है ना, इज इज नॉट ट्रू, कितना भी बढ़िया फीस्ट बनाएंगे आप और टाइम पास करके भी खाएंगे तो कितना, आधा घंटा में खाएंगे, आधा घंटे का पेट भर जाएगा आपका, अभी खाना बचा है उधर, खास खाने की इच्छा है आपको लेकिन आपका कैपेसिटी खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया और आपको जाके सोना पड़ेगा अभी, और कल घर पे याद करेंगे अरे कितना अच्छा खाना था आज तो नहीं मिल रहा है ना, कल की याद आएगी आपको आज नहीं मिल रहा है आपको, काश मैं आज के जैसा कल होता, कल तो मैं थका हुआ था और पेट भी भरा हुआ था, यही दुनिया का रोना है, सब कुछ दिखता है आपको लेकिन कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, दुख भोगने का कैपेसिटी ज्यादा है सुख भोगने का कम है। अभी आप बैठे समझो वहां पर हाँ, और अभी आप अगर आपके अगर समझो आपको उठ रहे आप उठ के गए और आपके लेफ्ट लेग के छोटे उंगली में आपको धक्का लगता है किसी चीज का, इसका लगता है धक्का समझो या इसका लगता है, तो आपका सारा ध्यान किधर जाएगा, सब शरीर आपका अच्छा है, आंखें अच्छी है, हार्ट अच्छा है, लीवर अच्छा काम कर रहा है, पेट में खाना भी हजम हो रहा है, पैर में मसल में ताकत है, इधर ताकत है, लेकिन सारा ध्यान वो उधर जाएगा कोने में जहां पर अभी चोट लगी हुई है, थोड़ा सा नाखून सा ऊपर आ गया है, थोड़ा सा थोड़ा लाल हो गया है, ऐसा तड़पेंगे आप, इज इट नॉट ट्रू, तो बॉडी इज डिजाइन फॉर व्हाट? आपका सारा दुख देने का कैपेसिटी बॉडी का बहुत ज्यादा है और सुख देने का बहुत कम है। अभी खाना खाएंगे मजा आएगा, क्या खाना खाया, उसके बाद कुछ देर के बाद खाना का एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। बट दुख का जो है ना अरेंजमेंट है ना, अभी आपको लगेगा ना चोट लगेगा, 3 दिन तड़पेंगे आप। एक बार मैं ऐसा रात को उठा था, बहुत मच्छर थे मेरा रूम में, 1 बजे ऐसा परेशान होकर उठ गया मैं, इससे एंग्री था मैं कि मेरे को बहुत थका हुआ था, मेरे को सोने का था, इससे मच्छर काट रहे थे। तो मैं ऐसा रात को उठा 1 बजे और बेड पे चढ़ गया और ऊपर से मेरे को वो जाली निकालने का था। जैसे मैं बेड पे चढ़ा ना, धाड़ करके दरवाजा खुला बेड का और मेरे अंगूठे पे गिरा, बराबर नाखून और स्किन का जॉइंट है ना, ऐसा दर्द हुआ मुझे, ऐसा दर्द हुआ, रात भर तड़पा, हॉस्पिटल गया उधर मैं, मेरे पीछे कितने डॉक्टर आ गए, वो कोई एक्यूपंक्चर दे रहा है मुझे, कोई इंजेक्शन दे रहा है, कोई मसाज कर रहा है, कोई सर को मालिश कर रहा है डाइवर्ट करने के लिए। क्या बताऊं आपको, सुबह तक तड़पता रहा मैं और 15 दिन तक मैंने पाँव को इतना बड़ा बैंडेज लगा के ऊपर रख के प्रैक्टिस किया मेडिकल, ऐसा टेबल रखा इधर उधर, ऐसा पैर पर इतना बड़ा बैंडेज, पेशेंट को देख रहा हूँ, एक जा रहा है पेशेंट, दवा देके कंपाउंडर दवा दे रहा है। इमेजिन 15 डेज तक मैं तड़पता रहा, क्योंकि नाखून भी निकालना पड़ा, उसको ऑपरेशन करना पड़ा, नाखून सब काला हो गया पूरा, इतना तड़प से तड़प के उठा था मैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक ना ऐसे कई एग्जाम्पल है, एक बार वही बेड का दरवाजा वार्सवाने के पैर में उधर ही गिरा, इमेजिन मच पेन वॉज देयर। तो आपको केवल एक ही पॉइंट समझना है कि आप कितना भी कोशिश करोगे ना, आपके शरीर का दुख भोगने का कैपेसिटी ज्यादा है, दुख देने का, शरीर भोगने का नहीं, दुख देने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है आपके अंदर और सुख मिलने का कैपेसिटी बहुत कम है। आप कितना भी कोशिश करो, आप चाहे अमेरिका के अध्यक्ष हो या शारजा के किंग हो या सऊदी के किंग हो आप, फिर भी सबके शरीर में वही योजना है, मोर अरेंजमेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग पेन, वेरी लेस अरेंजमेंट फॉर एंजॉइंग हैप्पीनेस, एंड बोथ आर टेम्पररी। और एक प्रॉब्लम है, आपको चाहते हैं कि वो रहे आपके पास, लेकिन रहेगा नहीं आपके पास। तो ये स्वर्ग का प्रॉब्लम है, पुण्य का प्रॉब्लम यही है कि पुण्य आपको ऐसी जगह लेके जाएगा। ये ना मैं दो साल गल्फ में रह चुका हूँ, मैंने गल्फ का लाइफ बहुत नज़दीक से देखा है, फिर अमेरिका भी गया, वहाँ का भी लाइफ नज़दीक से देखा है। क्या कर रहे हैं लोग, सब लोग ऐसा मेहनत कर रहे हैं, जरा इसको बाजू में करो प्लीज, सब लोग ऐसा मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा इंतजाम हो जाए कि भविष्य में आनंद मिलेगा। लेट अस वर्क हार्ड सो दैट इन फ्यूचर विल बी हैप्पी। बट आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, 17, 18, 25 साल तक मेहनत करके बहुत धन इकट्ठा किया है, प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है, आपको क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए सब इकट्ठा किया है, पर ओल्ड एज में इतना सा भी सुख नहीं मिला उनको, और एंड में सोचते हैं कि क्यों मेहनत किया इतना, क्या मिला? एक लड़का इंग्लैंड में है, एक लड़की US में है, कोई घर पर नहीं, इतना बड़ा घर है, फुल्ली एयर कंडीशन, सारी फैसिलिटी है, साउंड सिस्टम है, TV है, होम थिएटर है, कुकिंग रेंज है, AC है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जब बीमार पड़ता हूँ तो बच्चा बोलता है, पापा सबसे बेस्ट डॉक्टर को दिखाओ, मैं पैसा भेजता हूँ। बोले बेटा तुम आ सकते हो क्या? नहीं मैं नहीं आ सकता, बिलीव मी। उधर अंधेरी में एक सोसाइटी है, हमारे डॉक्टर वैष्णव सेवा प्रभु वहाँ पर रहते हैं, उनका पिताजी का घर है वहाँ पर, उसके कम से कम 550 फ्लैट्स है उधर वो बिल्डिंग के अंदर, इतने पॉश एरिया में, हर एक फ्लैट के सारे बच्चे लोग अमेरिका में हैं, बोलो। और वो बिल्डिंग 550 फ्लैट में केवल बुड्ढे लोग रहते हैं, और सब लोग केवल एक ही सोचते हैं, वो बेटा नहीं आ रहा है, अभी आज मेरे को ECG कराने का है, अब आज मेरे को 2D कार्डियोग्राफी कराने जाना है, आज डॉक्टर ने बोला है फास्टिंग शुगर करो, बहुत दिन ने शुगर नहीं किया है, आज डॉक्टर बोल रहा है लिपिड प्रोफाइल करो, बहुत फैट बढ़ गया आपका, वजन बढ़ गया है, तो भी चलने को नहीं हो रहा है। फ़ोन किया बेटे को मैंने, बेचारे को छुट्टी नहीं मिल रही है, क्या करेगा वो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करता है, इंग्लैंड से भी अमेरिका से भी ट्रैवलिंग करता रहता है, फ्रांस में, जापान में, यूरोप में जाते रहता है वो, टाइम ही नहीं मिलता इतना बड़ा प्रोफाइल में, मैंने पढ़ाया ना उसको, अभी इतना बड़ा आदमी बन गया तो टाइम नहीं मिल रहा है उसको मुझे मिलने के लिए। तो आपने क्यों मेहनत किया था? ताकि मैं ऐसा मेहनत करूंगा, मेरे बच्चों को ऐसा पढ़ाऊंगा कि मेरी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। तो इतना बड़ा हो गया है कि आपके पास ही नहीं आ सकता हूं। आपने ही बड़ा बना दिया उसको, इतना बड़ा बना दिया आपने उसको, इतना आपको गर्व है उस बात पर कि मेरा बेटा इतना हाईली एजुकेटेड है, इतना हाईली पोजिशनड है, इतना हाईली प्लेस्ड है, इतना हाईली कनेक्टेड है, आपको गर्व है उस बात पर। लेकिन जिस बात पर आपको गर्व है उसका आपको एक काड़ी का लाभ नहीं है, केवल आप मन में ही गर्व कर सकते, बाकी जो आपकी जरूरत है तब वो है नहीं आपके पास। तो ये इधर का स्टोरी हो गया। तो इधर पुण्य इकट्ठा किया, फिर आप ऊपर की स्टोरी चालू हो जाएगी, ऊपर जाएंगे उधर नंदनवन, अप्सरा, नब मुरझाने वाले फूल, क्या बताऊं आपको, सुगंधी शरीर, उधर फूल खाली खिलता है, मुरझाता नहीं कभी। इसलिए वो क्या करते हैं, अभी इतना सारा फूल जमा हो गया, अभी करने का क्या, इधर कुछ नीचे अच्छा हो गया तो ऊपर पुष्पवृष्टि करते हैं ना। आप सुना ना, भगवान ने कालिया को दमन किया, पुष्पवृष्टि किया, भगवान का जन्मदिन हो गया, नामकरण हो गया, पुष्पवृष्टि किया, पुतना का वध किया, पुष्पवृष्टि किया, शकटासुर का वध किया, पुष्पवृष्टि किया, कंस का वध किया, पूरा मथुरा में पुष्पवृष्टि किया, जन्म लिया तो पूरा पुष्पवृष्टि किया, वो भी जा जाकर हवाई जहाज भर के, विमान भर के आ रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर जाके फिर वापस डाल रहे हैं, क्योंकि इतना सारा फूल आ रहा है वो मुरझाता ही नहीं है। हमारे पास मुरझाता है तो हम लोग डस्टबिन में डालते हैं उसको, फिर नया फूल आता है, उधर खाली फूल आता है, मुरझाता नहीं है। लेकिन इतना सारा सुख भोगने के बाद में एक सुख की आदत बन जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी आदत बन जाती है आपका अकाउंट खाली हो जाता है, आपके कहते हैं गेट आउट प्लीज। वो कैसे होता है, और डिज्नीलैंड में कैसे होता है, या वाटर पार्क में कैसे होता है, आपके पास 100 कूपन है ना, है कुछ खाने वाले हैं, कुछ आप उसको यूज कर सकते हैं हर काउंटर पे, लेकिन 100 कूपन में 99 हो गया, 100 खत्म हो गया, तो यू हैव टू गेट आउट, नया कूपन खरीदना पड़ेगा आपको। वैसे ही बच्चा लोगों को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका इतना पैसा लाया सब खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड भी ये भी डिफंक्ट हो गया और लिमिट क्रॉस हो गया, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा उधर से। तो बच्चा बहुत रोएगा, अपने बच्चे को खूब खुश सुख दिया वाटर पार्क में और इसमें सब में घुमाया, अच्छा किया, लेकिन बच्चा जब जा रहा है वहाँ से तो हंस रहा है कि रो रहा है, मम्मी मुझे घर नहीं जाना है, मुझे इधर ही जू में रहना है, मुझे यहीं पर खेलना है, वही डायनासोर के साथ खेलना है, वही वाटर में जंप मारना है। आप बोले नहीं, कल आपको स्कूल जाना है, सुबह आपको नहीं जाना पड़ेगा। वैसे ही हमारा हालत स्वर्ग से नीचे आते समय होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सुख की आपको आदत लग गई है, लेकिन आपका अकाउंट खाली हो गया है तो आपको घर भी खाली करना पड़ेगा वहां से, फिर कहाँ पे आएंगे, क्षणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, वापस नीचे आना पड़ेगा मर्त्य लोक में। और मर्त्य लोक में आने के बाद क्या है, वही सेकंड क्लास वाला रेलवे है, भीड़ वाला, वही पसीना है, वही दर्द है, वही तकलीफ है। हाँ, हम लोग, जैसे मैं भी सऊदी अरब से अभी घर गया ना मुंबई में, एग्जिट लेके गया, तो मुझे लगा ये क्या ट्रेन में कौन चढ़ेगा इधर, इतना भीड़ ट्रेन में, इतना गर्मी है इधर, क्या करे इधर, क्या फूड क्वालिटी भी कुछ है ही नहीं, रोड पे खड्डे कितने हैं रोड के अंदर, गाड़ी चलाऊं कि मैं चल के जाऊँ, ऐसा समझता नहीं, गाड़ी लेके फायदा क्या है, अच्छी गाड़ी लेकर वहाँ से आए हो लेकिन गाड़ी चलाने के लिए रोड ही अच्छा नहीं यहाँ पर। बहुत दिन सोचना पड़ा कि क्या करूँ, टैक्सी से जाऊँ कि ट्रेन से जाऊँ, अभी जाता हूँ ट्रेन से, है ना, क्योंकि जो आदत लग गई है मुझे वो अभी बहुत तकलीफ है उसको वापस आने के बाद में, पैसा बहुत है, टैक्सी भी कर सकता हूँ लेकिन रोड ही अच्छा नहीं है, टैक्सी बैठने वाले घाट खोड़, अरे बाप रे, सोचा था मैं जैसे सऊदी जैसा बैठ के अच्छा पढ़ाई करूँगा, गाड़ी में बैठ के अच्छा सो जाऊँगा, लेकिन गाड़ी तो बहुत पॉश है लेकिन बैठना मुश्किल है उसके अंदर, क्योंकि रोड ही अच्छा नहीं है। तो ऊपर से नीचे आएंगे ना तो ये तकलीफ होती है, आदत तो बहुत सुख की लग गई है और यहाँ पर दुखी भरा हुआ है। फिर यहाँ पर नया अकाउंट बनाएंगे आप पाप पुण्य का, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर कभी कभी इधर से और नीचे जाएंगे, है ना, गलती से कुछ पाप वाप कर लिया तो फिर भोग शरीर का बदले में यात्रा शरीर मिलेगा, फिर दुख भोगेंगे आप, फिर वापस हो जाएंगे कि भाई एक बार खत्म हो गया ना ये नरकवास खत्म हो गया, फिर वापस जाके पृथ्वी पर जाके पुण्य कमाऊंगा, वापस स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन आप विचार कीजिए, दो मिनट के लिए विचार कीजिए कि पाप का फल भोगना अच्छा है कि पुण्य का सुख भोगना अच्छा है, इफ यू से समथिंग यू टू जस्टिफाई ऑल्सो. ऐसा ऐसा नहीं काटा छापा हेड्स और टेल्स ऐसा नहीं है. आपको बताना पड़ेगा आप क्योंकि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं.
बिकॉज क्योंकि पाप की जब अनुभूति हो रही है ना हम लोग सोचेंगे कि ये इतना ज्यादा दर्द है ये जो चक्कर है जन्म मृत्यु से उससे बाहर निकल जाए तो ये बेटर.
बहुत बढ़िया बात बताई आपने. पाप का जब हम फल भोगते ना तो हमको बहुत दुख होता है ना. और वो दुख में हम भगवान की याद अच्छी तरह कर सकते हैं. हे भगवान क्या हो क्या रहा है कहाँ हो तुम हो कि नहीं हो देख रहे हो मुझे कि नहीं देख रहे हो इतना तड़प रहा हूँ मैं आप किधर हो. लोग कहते हैं आप हो दयालु हो आप किधर हो भगवान. ऐसे तो कम से कम बोलेंगे आप. तो बहुत सुख रहेगा आपको. अच्छा खाना खा रहे हैं अच्छी बीवी है अच्छा पैसा है अच्छा गाड़ी है फैसिलिटी है हर जगह पर हेलीकॉप्टर है हर जगह पर एंजॉयमेंट है तो क्यों भगवान को याद करेंगे आप. बोले मैंने कमाया सब कुछ इतना पसीना भाया ना सब इसकी कमाई है सभी मैं करता हूँ आई एम द डूअर ये सब मैंने कमाया हुआ है ये सब मेरा एंजॉयमेंट मेरा डेवलपमेंट है पर ये मेरा विकास है पूरा ये. भगवान को नहीं बोलेंगे कि आपकी दया है भगवान थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इतना सुख दिया ऐसा नहीं बोलेंगे आप. दुख बोलेंगे तो बोलेंगे किधर है भगवान भगवान आप इतना दुख क्यों दे रहे मुझे ऐसा बोलेंगे आप. इसलिए हाँ किधर है भगवान बोलेंगे आप या तो नास्तिक बन जाएंगे या तो भगवान को गाली देंगे. इसलिए पाप और पुण्य में से आपको अगर चुनना है ना तो पाप ही चुनना अच्छा है. पाप करना अच्छा नहीं है लेकिन पाप का दुख भोगना अच्छा है क्योंकि पाप पे दुख में आप भगवान को याद करते रहेंगे और जब भगवान को याद करते रहेंगे इस चक्र से छूट जाएंगे आप. ये समझना चाहिए. और हमको दुनिया में यही पढ़ा जाता है कर्म कांड करो कर्म करो अच्छे कर्म का फल अच्छा इकट्ठा करो बाद में स्वर्ग में आनंद मिलेगा आपको. यही यहां पढ़ाया जाता है बेटा अच्छा काम करो. एक बार प्रभुपाद जी हमारे यमुना में स्नान कर रहे थे. बहुत सारे भक्त भी थे उनके साथ यमुना में स्नान कर रहे थे. तो प्रभुपाद जी थोड़े बुढ़े थे ना तो धीरे धीरे कपड़े निकाल रहे थे. यंग बॉयज ने फटाफट कपड़े निकाल के यमुना में जंप लगाया. उन्होंने सुना था कि यमुना में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं. तो बड़े उत्साहित थे वो कि आज यमुना में स्नान करेंगे सब पाप को धो डालेंगे. और प्रभुपाद जी ने बताया यमुना में स्नान करने से पाप के साथ पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं. कुछ लोग यमुना से बाहर आ गए. अरे बोले बाप रे गड़बड़ हो गया हमारा क्या सोच के गए थे और क्या हो गया. तो यमुना जी में स्नान करने से आपका पाप भी नष्ट होगा और पुण्य भी नष्ट होगा. मतलब क्या पूरा चक्र ही खत्म कर देगी वो आपका. क्योंकि पुण्य करने से ऊपर जाएंगे ऊपर जाते नीचे आएंगे. जैसे कि आप लिफ्ट में खड़े आपके बिल्डिंग 17 माले का है वो क्या कर रहा है 17 पे जा रहा है फिर 0 में आ रहा है फिर P1 P2 P3 में जा रहा है वापस 17 में जा रहा है. तो हम बोलेंगे अरे क्या कर क्या रहा है तू. नहीं मैं यात्रा कर रहा हूँ ऊपर नीचे. तो आप ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे. समझो आपकी बिल्डिंग में आप फ्राइडे को देख रहे हैं कि एक आदमी सुबह से शाम तक ऊपर नीचे जा रहा है. तो आप बोलेंगे बड़ा बुद्धिमान आदमी हो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है कितना एक्सपर्ट है कितना इंटेलिजेंट देखो कभी ऊपर जा रहा है ऊपर का नज़ारा देख के कभी नीचे जा रहा है बेसमेंट में नज़ारा देख रहा है कभी बीच में नज़ारा देख रहा है सब कुछ कितना अच्छी तरह से यात्रा कर रहा है ऊपर नीचे. लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे आप. लेकिन हम सब लोग वही कर रहे हैं बाय द वे प्लीज़ अंडरस्टैंड. कभी स्वर्ग में जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऐसा गोल गोल मेरी गो राउंड आई ऑफ शारजा उसमें घूम रहे हैं खाली बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे. जब नीचे आएंगे तो पेट में ऐसा चक्कर आएगा ऊपर जाएंगे तो जूम ऐसा हो जाएगा. कुछ एक क्षण के लिए ऊपर रहेंगे तो बहुत मजा आएगा वापस नीचे आएंगे तो तकलीफ होगा. लेकिन किधर आप स्टडी हो सकते हैं स्टडी नहीं हर समय आपको मूविंग है मूविंग कॉन्स्टेंटली यू आर मूविंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. देयर इज नो हैप्पीनेस यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस दैट इज भक्ति. और ये हम भगवद गीता में और भागवत में सीखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको इतना समझ में आएगा ना आपका भक्ति का गाड़ी फोर्थ गियर में चलेगा निश्चित रूप में समझना. ये सुख को इकट्ठा करने का और दुख को दूर ढकेलने का जो प्रयत्न है ना उसको छोड़ दो आप. वो तो आएगा ही और आप उसको रोक नहीं सकते हो. सुबह आप निकलो काम पे आज है ना ऐसा काम करूंगा ना जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और शाम को खुशी लेकर घर लौटूंगा. लेकिन होता एकदम उल्टा है ना. तो आपको मन पड़ेगा अरे इतना प्लानिंग करता हूँ, इतनी बुद्धि है मेरे पास, इतना मैं प्लान योजना बनाता हूँ, इतना मैं सिस्टमेटिक हूँ, इतना ऑर्गेनाइज्ड हूँ, इतना मेटिकुलस हूँ, लेकिन फिर भी गड़बड़ किधर होता है? समझ में नहीं आता कुछ। तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि अबव ऑल देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्मा जीन्स। कर्मा जीन्स वो सारे चीज के ऊपर आपको हताश कर देता है, हेल्पलेस कर देता है, और जो होना है वही होते रहता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप समझो कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, और कितना भी आप कोशिश करेंगे आपको जो मिलना है वो मिलेगा ही, उसको आप टाल नहीं सकते हो। आप बोलेंगे हाँ आ जाओ सुख आ रहा है, आ जाओ दुख आ रहा है तो मत आओ, लेकिन आ जाओ मत आओ दोनों आप कहने का अधिकार ही नहीं आपको, आप खाली बोलते रहो, वो जो होना है होते रहेगा। इज इट नॉट राइट? आप बड़ा फीस्ट बनाया घर पे, कोई 5 जलेबी खा रहा है, कोई 6 खा रहा है, और कोई भाग रहा है लैटरिन में, कौन तय करेगा? वही तो वही खाना है, ऐसा हाइजीनिक खाना था, लेकिन somebody is running toilet 2 days and somebody is happy। खाना तो प्रेम से बनाया था सबके लिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस दुनिया में समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को मिलता नहीं, जब मिलना है तभी मिलता है, जितना मिलता है उतना ही मिलता है। आप कितना भी कोशिश करो, आप भी देख रहे हो कि ये माताजी का हस्बैंड तो रिच है, मेरा हस्बैंड तो रिच नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी इतना रिच बनना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे। ये बोलते हैं कि उसकी बीवी कितनी ब्यूटीफुल है, मेरी बीवी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, उसका बच्चा देखो स्कूल में फर्स्ट आता है, मेरा बच्चा फेल होते रहता है, उसका बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता है लेकिन मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है लेकिन एग्जाम में फेल होता है। कितना सोचेंगे आप, कितना कॉम्बिनेशन करेंगे आप, मेरी बेटी के बाल बहुत लंबे हैं, उसकी बेटी की आंखें बहुत अच्छी। ऐसा ही चलता है अपना जिंदगी पूरा, होल लाइफ ओनली मेडिटेटिंग ऑन दिस, उसके पास क्या है मेरे पास क्या है, उसके पास जो है मेरे को चाहिए, मेरे पास जो है उसको चाहिए, यही चलता है जिंदगी पर में। यू आर नेवर हैप्पी। आपको पहले माले पे घर, आपको लगता है कि 11th माले पे होना चाहिए, 11th पे जाएंगे उसका तो 25 माले का बिल्डिंग है, वो तो 25th में रहता है, डुप्लेक्स फ्लैट पे रहता है, तो वहां जाना चाहिए। वहां जाएंगे तो बोलते हैं वो तो 135 बिल्डिंग है ना, वहां बुर्ज खलीफा, उसमें एक फ्लैट होना चाहिए, वर्ल्ड की बेस्ट बिल्डिंग है वो। दिस इज हाउ इट गोज ऑन, देयर इज नेवर एंड ऑफ ऑल दैट। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है ना, वो क्या देखता है मन में, जो रियली बुद्धिमान है वो सोचता है नीचे भी तकलीफ है, बीच में भी तकलीफ है, और ऊपर भी तकलीफ है, तो मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बाहर ही जाना है, इसमें जाना ही नहीं मुझे। कि जो गरीब है वो भी तकलीफ में है, जो मिडिल क्लास है वो भी तकलीफ में है, जो रिच है वो भी कष्ट में है, तो वाई शुड आई ट्राई फॉर एनीथिंग ऑफ दिस, इसमें से बाहर निकलेगा तो उसमें खुशी मिलेगी। तो शास्त्र में लिखा है कि भौतिक दुनिया में अगर सुख चाहिए तो एक काम जरूर करना चाहिए, वो कौन सा काम है मैंने उस दिन भी बताया था, परसों के लेक्चर में भी, अगर आपको दुनिया में सुखी होना है तो क्या करना चाहिए आपको, दुनिया में सुख खोजना छोड़ दो, इस दुनिया में सुख खोजना छोड़ दो, क्योंकि यहां पर दुख सुख का इंतजाम भगवान ने किया ही नहीं है। माम उपेतंतु कौन्तेय्या दुखालयम अशाश्वतम, दुनिया का मैन्युफैक्चरर अपने मैनुअल में बोल रहा है। अभी हमने टीवी लिया तो क्या देखेंगे, अभी मैंने भी ये लिया तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि फॉर्मेट करूँ कि नहीं करूँ, 2-3 बार कोशिश किया, यहाँ पर प्रभु जी ने फॉर्मेट करके दिया फिर भी नहीं हुआ, फिर मैंने इसमें ही फॉर्मेट किया उसको, वो सब बुक में दिया था ऐसा करना है, वो बोल रहा है इनवैलिड SD कार्ड, वो बोल रहा है नो SD कार्ड, पहले बोलते हैं नो SD कार्ड, बाद में बोलता है इनवैलिड SD कार्ड, तो फॉलो क्या करना है मुझे, वो बुक में दिया हुआ फॉलो करना है। वो टीवी के मैनुअल लेके इसको चला सकता हूँ क्या मैं, इसका मैनुअल लेके ही मैं देख सकता हूँ कि कैसे चलाना है उसको, तो बेस्ट यूज उसका मिलेगा मुझे। तो जिसने दुनिया बनाया है वो मैन्युफैक्चरर बोलता है मेरे पास ये मैनुअल है, ये लो, ये ह्यूमन लाइफ जो है ना इसका मैनुअल है, इसको ऐसे चलाना है आपको। तो वो बोल रहा है कि ये दुनिया मैंने बनाया है जिसमें आप लोग रह रहे हो, इधर कोई सुख का प्लानिंग मैंने किया नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डाला नहीं इसके अंदर मैंने, केवल दुख का ही सॉफ्टवेयर डाला मैंने इधर, और वो भी टेम्पररी, दुखालयम अशाश्वतम, जो भी रहेगा दुख से भरा रहेगा और जो भी रहेगा वो टेम्पररी रहेगा। अभी वो मैन्युफैक्चरर बोल रहा है तो आप क्या उसमें सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो क्या उसके अंदर, मैं खाली चला सकता हूँ ये खोल के चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसको टीवी बनाऊंगा क्या मैं, हाँ स्क्रीन तो है इसके अंदर, चलो टीवी बनाते हैं इसको, इसमें फिल्म देखते हैं, हो सकता है इसके अंदर, नहीं हो सकता है। You cannot change anything here. You have to just go through, that's all. You have to just go through, nothing else. But you can choose to get out. आप बाहर निकल सकते हैं. और उसका फॉर्मूला वो भी मैनुअल में दिया है कि इसमें रहते हुए क्या करना है, आपको कैसे बाहर निकलना है वो भी बताया है. और बाहर निकलने का, समझो आपकी बिल्डिंग में कितना बेसमेंट है, 3 बेसमेंट है, P1, P2, P3, फिर G है, फिर 1 to 17 है ना. अगर बिल्डिंग के बाहर निकलना है तो कहाँ से निकलना है आपको? टेरेस से जंप मारोगे? नहीं ना. या P3 से बाहर जाओगे? नहीं. जी इज द ओनली बोनाफाइड वे टू गेट आउट. आप मॉल में जाओ, किधर भी जाओ, अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको जी में आना पड़ेगा. तो ये जी है ना, जी ये आपका पृथ्वी लोक है जहाँ पर आप बैठे हो. आप स्वर्ग में भी जाओगे वहाँ से भगवत धाम का रास्ता नहीं है, वहाँ से इधर ही आना पड़ेगा. नरक में भी जाओगे वापस अर्थ में आना पड़ेगा. अर्थ से ही फ्लाइट मिलता है उधर जाने का, भगवान के धाम में जाने का. और अर्थ में ही वो फैसिलिटी है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो. अर्थ इज द ओनली प्लेटफॉर्म. इसलिए देवता लोग भी, प्लीज लिसन केयरफुली, सारे देवता लोग कलयुग में लाइन में खड़े हैं भक्तों के घर में जन्म लेने के लिए, आप लोगों के घर में जन्म लेने के लिए. जो नई नई शादी हो गए, भक्ति करने में लगे हुए हैं, उनके पेट में गर्भ बन के आने के लिए देवता लोग लाइन में खड़े हैं. क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, शास्त्रों को जानते हैं. वो जानते हैं कि कलयुग में जो भगवान का नाम लेगा वो कुछ ही समय में भगवान के पास चला जाएगा. ये हमारा देवताओं का जीवन लाखों साल का होता है. हाँ, हर एक देवता का, जैसे भूवर लोका, स्वर्ग लोका, जनल लोका, महर लोका, तपलोका, सिद्ध लोका और ब्रह्म लोका, ये हायर प्लैनेट्स हैं. यहाँ पर आप जाएंगे तो लाइफ ना पहले हजारों साल, फिर लाखों साल, फिर करोड़ों साल भी होता है एक लाइफ. हाँ, इतना भोग है उसके अंदर, खत्म ही नहीं होता है. जैसे आपके एक रात में कीटक के 3 पीढ़ियां गुजर जाती है थी ना. आप रात को सो गए, वो रात जब उठे आप सुबह, तब तक 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां मच्छर के खत्म हो जाती है. कभी कभी ऐसे कीटक भगवान ने बनाए. वैसे ही देवता का एक जीवन में यहां पर आप लोगों का कई जीवन बीत जाते हैं. यही सब खेल है यहाँ का. तो देवता लोग क्यों लाइन में खड़े? बोले इतना साल उधर भोग के चक्र में बिताने के बदले में अल्टीमेटली जाना कहाँ है? भगवत धाम में है ना. पढ़ा है हम लोग ने, समझ गए हम लोग, इतनी भगवान ने बुद्धि दिया है तो जाना है भगवत धाम में हमको. तो वाई टू वेस्ट टाइम? अभी अच्छा मौका है, कलयुग शुरू हो गया है, भगवान ने बोला है कि मैं आ गया हूँ, भगवान का नाम बिता रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करेंगे इसमें तो इसी जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाएंगे. वाई टू वेस्ट टाइम? सुख दुख के चक्कर में सब टेम्पररी है. क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या क्या भगवान ने किया है? आद्यंतु वंतु कौन्तेय नते रमते नतेषु रमते बुधा. बुधा मतलब बुद्धिमान. वो रमते मतलब उसमें आनंद लेता नहीं है वो. गुजराती में क्या बोलते हैं? रमिया छे, है ना. वो रमता नहीं है उसके अंदर. क्यों रमता नहीं है? उसको मालूम है इसमें शुरुआत है और एंड है, इसमें दिल लगाने से धक्का ही लगने वाला है मुझे, इसलिए मुझे उस चीज़ में दिल लगाना है जिसकी केवल शुरुआत है, अंत नहीं है. क्योंकि वो मेरा नेचर है. माई नेचर इज टू हैव कंटिन्यूअस स्टेडी कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस. ये मेरा नेचर है, उसमें कोई पाप नहीं. वो मेरा स्वभाव है, मेरा स्थायी भाव है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो. माई इनर निटिंग इज टू बी हैप्पी ऑलवेज. और वो हैप्पी ऑलवेज यहाँ पर होता ही नहीं कभी, इसलिए मैं दुखी हूँ. सुख मिलने पर भी दुखी हूँ क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं मिलता है, उसमें बहुत ब्रेक आती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. इसलिए देवता लोग बुद्धिमान जो देवता हैं, सब देवता बुद्धिमान नहीं होते हैं, कुछ कुछ देवता बुद्धिमान होते हैं, बाकी सब हमारे तुम्हारे जैसे यहाँ से पुण्य करके वहाँ गए हुए ना, वो दुख भोग के चक्र में भाग रहे हैं जिसके लिए वहाँ पर गए. लेकिन कुछ देवता लोग विशेष देवता होते हैं, वो सब ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं, वो लोग लाइन में खड़े हैं कलयुग में वैष्णव के घर में जन्म लेने के लिए. वैसे अभी हमारा गोपी प्रिया का गोपाल है, आपके घर में बच्चे हैं, वो सब देवता लोग हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें सब भोग के आए हुए हैं, वो सब जानकर आए हुए हैं. बस हो गया, अभी अभी भक्त के घर में जन्म लेंगे, भगवान नाम लेंगे, भक्ति करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से. बहुत हो गया, अभी कितना तड़पेंगे, कितनी बार आएंगे यहाँ पर, चाह चाह कर आए, क्या क्या प्लान बनाकर आए, हर बार ठोकरे खाई, इधर गया धक्का लगा, उधर गया धक्का लगा, उधर गया गिर गया, बस हो गया, अभी निकलना है बाहर, अभी अंधकार से बाहर निकलना है और लाइट में जाना है, अभी लाइट में, ताकि सब दिखे क्या हो रहा है, तो मैं जा सकूं बाहर उसके। और यही हमारे चैतन्य महाप्रभु की कृपा है सबसे बड़ा। और आप एक बात बताना, मैं जरूर भूल गया इसके अंदर, देवतालोक में आने में क्या होता है? आप भागवत पढ़िए, मैं सुबह अभी शाम को आने के पहले बहुत पढ़ के आया, कॉन्स्टेंटली देवता और राक्षस का युद्ध चल रहा है, कॉन्स्टेंट अनेक बार उनका युद्ध हुआ है। तो आपको लग रहा है तो मैं वहां पर मेवा खा रहा हूं, अप्सराओं के आनंद ले रहा हूं, लेकिन युद्ध करते हुए अप्सराओं का भोग कैसे लेंगे? ऐसा हो सकता है एक गोद में अप्सरा रखा है, गोद में बाण मार रहा हूं राक्षस को, ऐसा हो सकता है क्या? जलेबी खा रहा हूं, सोमरस पी रहा हूं, या न बुझने वाले फूलों का खुशबू ले रहा हूं, यहां से बाण चला रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आइदर यू आर फाइटिंग और यू आर एंजॉइंग। अच्छा, ऊपर से नीचे कोई तपस्या करने बैठ गया ना तो इंद्र को टेंशन आता है। ऊपर जो देवताओं का राजा है, देवेंद्र है, उसके अलावा इतना भोग का इंतजाम है, सारा उसके लिए बनाया हुआ है, वो राजा है सबका। लेकिन वही राजा जब नीचे कोई तपस्या करने बैठ गया ना तो टेंशन में आके मेनका को भेज, जाके उसकी तपस्या भंग करूं, क्योंकि वो तपस्या सफल हो जाएगा तो मेरा पोस्ट ले लेगा वो, मुझे रिजाइन करना पड़ेगा उसमें से। ही विल बी मोर क्वालिफाइड टू सिट इन माई चेयर एंड आई हैव टू एम्प्टी माई चेयर। प्रधानमंत्री को टेंशन क्या है कि 2019 में खाली करना पड़ेगा कि उसमें बैठूंगा, मालूम नहीं है। आज है लेकिन 2019 में क्या होगा मालूम नहीं है। ऐसे ही सब चलता है दुनिया में। तो यू आर नॉट हैप्पी देयर ऑल्सो बाय द वे, प्लीज अंडरस्टैंड। उधर एक बार ऐसे क्या हो गया, एक बार दुर्वासा मुनि आ गए, वो भी वैकुंठ से आ रहे थे, और वैकुंठ से उसको इंद्र को मिलने जाना था, कृपा करने के लिए, दया देने के लिए, सत्संग देने के लिए, कुछ भी बोलो। तो हम लोग कैसे करते हैं, अभी समझो मैं अभी शारजा में आया तो मैं जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेके आया, थोड़ा बहुत था मेरे पास, तो आया कहीं से था लेकिन मैं लेके आया ताकि यहाँ पर किसी को दे सकूँ। वैसे ही दुर्वासा मुनि विष्णु की महाप्रसादी माला लेकर आए इंद्र को देने के लिए, कितना भाग्य है उसका। जस सोचो आप, कोई आदमी आपके लिए वैकुंठ, आपको जाने का अलाउड नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई जाने का अलाउड है, वो जाके आ रहा है आपके लिए, याद करके विष्णु की महाप्रसादी माला लेके आ रहे हैं। लेके आए तो इंद्र क्या कर रहे हैं, अप्सराओं का डांस देख रहे हैं, एंजॉइंग ब्यूटिफुल अस्परास, फ्रेग्रेंट, सो ब्यूटिफुल, उनका स्किन, उनका बाल, उनकी आंखें, आप यकीन नहीं कर सकते। ऐसे कहते हैं कि हम लोग अभी इसी स्टेज में अगर स्वर्ग में पहुंचेंगे ना तो मर जाएंगे हम लोग, इतना ब्यूटी है वहां पर, वो सहन ही नहीं कर पाएंगे, इतना वासना उत्पन्न होगा कि वासना से ही मर जाएंगे इस शरीर में, वो वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, अब पहुंचेंगे तो उधर ही मर जाएंगे, इतना लस्टी एक्टिविटीज आर देयर अवेलेबल। तो ये बेचारे मग्न है उसके अंदर, तो इन्होंने दिया माला उनको, तो इतने बिजी है कि वो माला उन्होंने लिया और वो हाथी के हाथ में दे दिया, अपना व्हीकल ना एरावत। अभी हाथी तो हाथी है, उसने क्या किया, उसने लेकर पहल में कुचल दिया उसको, वो तो हाथी है, उसको क्या मालूम, जिसको मालूम है उसने हाथी को दिया ना, उसका प्रॉब्लम है बड़ा। तो वो एक चीज करने से, देखो पुण्य कर्म करके वहां पहुंचा और अभी अप्सराओं का भोग लेने का भाग्य उसको मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ही इज वल्नरेबल टू फॉल डाउन, वो पतनी है, पतनशील जीव है, फिर भी वो कभी भी गिर सकता है। तो ऐसा अनजाने में कुछ गलती हो गया तो उस एक चीज से उसका सारा ऐश्वर्य एक क्षण में नष्ट हो गया, उसके होश उड़ गए, अरे बाप रे, वो गिड़गिड़ाने लगा, बोला कुछ नहीं, तुमने विष्णु के महाप्रसादी माला का अपमान किया है, तुम्हारा सारा राज्य ऐश्वर्य शक्ति अभी राक्षस लोग छीन लेंगे आपका। श्योर इनफ बलि महाराज ने अटैक किया, शुक्राचार्य से द्वारा बहुत यज्ञ किया, ब्राह्मणों का सेवा किया और बलि में अटैक किया, तो कहते हैं बलि महाराज में ब्राह्मणों की सेवा करने के बाद में आशीर्वाद प्राप्त करके इतना तेज था कि अमरावती, इंद्र का राज्य था ना, अमरावती नाम है उसका, उधर उसके प्रकाश से अमरावती पूरा भर गया, पूरा फुल्ली कवर्ड बाय एफलजेंस फ्रॉम बलि। तो इंद्र भाग गया बृहस्पति के पास, तो महाराज गुरुदेव क्या करें, ऐसा हिम्मत ही नहीं हो रही है उसके सामने जाने की, लगता है कि सारा शक्ति खत्म हो गया। तो बृहस्पति बोला, हाँ तुमने तो जो पाप किया है ना, तुम्हारे वजह से सारे देवताओं का भाग्य भी नष्ट हो गया है, क्योंकि तुम उसके किंग थे ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, तो तुमने ऐसा गलत काम किया उसका परिणाम तुम्हारे पूरे परिवार में भी होगा। जैसे आपने गलती किया तो आपका, समझा आपने गलती किया और पैसा आपका बहुत लॉस हो गया शेयर मार्केट के अंदर, सारे घर का भी नुकसान होगा कि नहीं उसके अंदर, घर में जलेबी नहीं आएगी, दाल रोटी आएगी खाली, सलाद आएगा सारी, बॉयल वेजिटेबल आएगा, क्या मालूम। तो गलती तो आपने किया, लेकिन परिणाम कौन भोग रहे हैं? सब लोग भोग रहे हैं। रावण ने सीता को छीन लिया, लेकिन सब रावण के राक्षस मर गए कि नहीं? बेटा भी मर गया, सब बेटा मर गए, सब लोग पूरा वंश नष्ट हो गया उसका। गलती तो उसने किया था, लेकिन उसका परिणाम सारे डिपेंडेंस को भोगना पड़ा। तो बृहस्पति ने बोला, तुमने जो गलती किया है तुमको भी कोई चांस नहीं है, युद्ध बुद्ध करने का सोचो ही मत, उसके मुंह लगने का सवाल ही नहीं उठता है, भेष बदलो, कुर्सी खाली करो और भाग जाओ। ऐसे ही बताया, सिंपल। वो मैं बंबई की भाषा में बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो संस्कृत में बताया, इतना फर्क है। क्योंकि बताया वही है, गेट आउट, चेंज योर फॉर्म एंड गो अवे फ्रॉम हियर। तो युद्ध बुद्ध हुआ ही नहीं, ऐसा आया और सीधा बैठ गया सिंहासन पे बलि महाराज, सब लोग भाग गए। किधर सुख है उधर? लगता है आपको सुख है करके, लेकिन उधर भी आप गलती करके सारे सुखों को गवा सकते हो, पाप कर सकते हो। कई बार ऐसे हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, इंद्र ने कई गलतियां की है, कई बार उसका फॉल डाउन हो गया है, सारे देवताओं को भी दुख हो गया उसकी वजह से। कभी ये ऊपर, कभी वो ऊपर, कभी वो आ रहे, कभी आ रहे, कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं। अभी आप समझो, आपके घर में अभी मैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बाहर कॉन्स्टेंटली वॉर हो रहा है, तो हम लोग प्रवचन कर सकते हैं यहाँ पर? इधर कुछ गोली मारी हो रही है, कोई बॉम्ब गिर रहा है, कोई हैंड ग्रेनेड गिर रहा है, कोई गाली बक रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ऊपर से कोई फेंक रहा है नीचे को किसी को। तो कैन यू सिट डाउन हियर? एक जमाना था यहाँ पर भारत में, रोड पे ऐसे चल रहा था कुछ समय के लिए, झगड़े हो रहे थे ना, तभी पब्लिक सोचते थे इंडिया जाएगा जो निकल के, अभी इतना इंस्टेबिलिटी हो गया यहाँ पर, फिर शांत हो गया। तो यू कांट स्टे पीसफुली डे एंड नाइट, यू आर इन द हाउस बट यू आर रेस्टलेस इन द हाउस। उसी तरह से जिंदगी है उनकी। फिर बलि महाराज ने और 100 यज्ञ करने का प्लानिंग किया। तो देवता लोग कभी निकल तो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे राजा नहीं मान रहे ना, मैं जबरदस्ती आके बैठ गया हूँ, तो मुझे राजा मान्यता प्राप्त करने के लिए अभी 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। वो भी खुश नहीं है बाय द वे, इंद्र की सीट पर जाके बैठ गया वो। अभी इंद्र की सीट पर पहले बैठने का एम था उसका, बाद में क्या नया एम जागृत हो गया उसके अंदर। पहला एम क्या था? इंद्र का पोजिशन पर जाके बैठना चाहिए मुझे, बलपूर्वक क्यों ना हो बैठना चाहिए। तो वो था यशस्वी हो गया उसके अंदर। जब बैठा तो उस बाद में मन में क्या आया, ये देवता लोग तो अपने मन के खिलाफ भाग गए हैं, लेकिन मुझे मान्यता नहीं दे रहे कि मैं इंद्र हूँ, अभी इंद्र बन गया हूँ, तो वो मान्यता मिलनी चाहिए। इसलिए गुरु बोलते हैं उसके शुक्राचार्य, 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा आपको। बोला ठीक है, चलो करो उसको भी, आप ही इंतजाम करो, मैं सब आपको देता हूँ साहित्य। 99 पूरा हो गया तो अजिति को दुख हो गया बहुत। कौन अजिति? कौन है? देवताओं की माँ है। बोल रही मेरे सारे बेटे, इंद्र आदि सारे बेटे जो हैं भटक रहे हैं, बंजारे बनकर भटक रहे हैं। देवता बने थे, देवताओं का राज्य एंजॉय किया था उन्होंने, अभी राज्यहीन होकर, धनहीन होकर, श्रीहीन होकर, यशहीन होकर भटक रहे हैं सब जगह पे। दुख हो रहा है मुझे मेरे बालकों को देखकर, कुछ करो भगवान, कुछ करो भगवान। ने पहले पति को मिली, तो पति कश्यप मुनि थे, प्रजापति, भगवान के भक्ति में मस्त थे वो। तो उन्होंने उनको व्रत बताया, ये आप व्रत करो तो आपको ऐसी संतान होगी देवता रूप में जो बलि महाराज को परास्त करेगी, और आपके बच्चे वापस राज्य में आकर बैठ जाएंगे। तो बलि कश्यप मुनि की पत्नी अदिति देवताओं की माता ने फिर व्रत किया, और उस व्रत के परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, भगवान वामन देव का जन्म हुआ। इतना सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। भगवान ने 4 भुजा में दर्शन दिया, इतना सुंदर वर्णन है उसका भागवत में। फिर अदिति ने बोला कि आप बालक बन के आ जाओगे, तो 2 भुजा वाले छोटे से ब्राह्मण बटू बालक बने वो। फिर बृहस्पति ने आकर उसका जनी संस्कार किया उनका, और फिर किसी ने उनको कमंडल दिया, किसी ने छतरी दे दिया, किसी ने खड़ाऊ दे दिया, किसी ने मृग चर्म दे दिया, व्याघ्र चर्म दे दिया, ऐसे सब साधुओं को ब्राह्मणों को क्या होता जरूरी, वो सब दे दिया। और ये चले कहाँ? चले जहाँ पर 100th यज्ञ चल रहा है। 99 तो यशस्वी हो गए, अभी 100वां यशस्वी हो गया तो इंद्रपद मान्यता के साथ मिलेगा। उधर पहुंच जाते हैं, इतना तेज था उनका बलि महाराज, सब ब्राह्मणों की सेवा करके, सबको संतुष्ट करके, दान धर्म करके, उनकी आज्ञा पालन करके, धर्म की विधि करके, इतने तेज प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इनका तेज वामन देव का इतना दिव्य था, तो शास्त्र में वर्णन ऐसा आता है कि जैसे ही वामन देव उस असेंबली में आए तो सबका तेज नष्ट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने दिवाली के अंदर करोड़ों दीपक लगाए, बल्ब लगाए, कंदील लगाया, सारा शारजा पूरा लाइट से भर गया है, लेकिन रात को दिवाली में आपने दीपक लगाए, कंदील लगाया, बल्ब लगाया, लाइट लगाया और सुबह सूरज आया तो क्या हुआ? सब बल्ब वही जल रहे हैं, लाइट भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, तो बल्ब का पावर कम नहीं हुआ, कोई ज्यादा पावर का बल्ब आ गया आकाश में, तो सब लाइट चालू है लेकिन दिखते ही नहीं लाइट चालू है कि नहीं, हो चले अंधेरे में दिखते हैं, सूरज में कुछ दिखते नहीं है, वैसे हो गया। भगवान वामन देव आते ही पूरा प्रकाश सब जगह छा गया और सारे जो दिव्य तेज वाले ब्राह्मण थे वो निस्तेज लगने लगे और सब ऐसा विधि छोड़कर खड़े हो गए ऐसे विथ ऑय एंड रेवरेंस, पूरे प्रभावित होकर इम्प्रेस होकर खड़े हो गए हाथ जोड़कर कि आप कोई महान व्यक्ति हो। तो शुक्राचार्य बोलते कान में, ये बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान है, इसको देना नहीं कुछ। अभी राक्षसों का गुरु है ना वो, तो राक्षसों का जो यजमान है, मतलब जो गुरु का यजमान है, वो टिकेगा तो दक्षिणा मिलेगा, वो यजमान खत्म होगा दक्षिण कहाँ, दक्षिणा कहाँ से मिलेगा, है ना? ब्राह्मण लोगों का ऐसा रहता है, यजमान को बनाए रखते हो लोग, कॉन्टेक्ट करके फोन में बनाए रहो, भाई तुम अच्छे रहो, फलो फूलो, तुम फलो फूलोगे दक्षिणा भी फलती फूलती रहेगी, है ना? ऐसा ही रहता सब कुछ, कैलकुलेशन कलयुग का। तो बलि महाराज खड़े हो गए हाथ जोड़कर, मुझे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, और वही भगवान आप बोल रहे हो कान में मेरे कि वही भगवान ब्राह्मण बनकर भिक्षा लेने के लिए मेरे दरवाजे पे आ गए, कितनी बड़ी भाग्य की बात है। अगर ब्राह्मण बनकर आ गए हैं तो मेरा ये भाग्य है कि भगवान को भी मैं दान दे सकता हूँ, इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती है? तो कान में गुरु बोल रहे हैं, देखो उसको कुछ दोगे ना तुम, मैं तुम्हें शाप दूंगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। बोले सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन इनकी इनकी प्राप्ति होगी, इनका कृपा मिलेगा तो चलेगा मुझे। तो उन्होंने गुरु का भी आदेश तोड़ दिया। ऐसा एक ही प्रसंग है पूरे शास्त्र में, पूरे पुराण में, पूरे इतिहास में, जब योग्य तरीके से गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, अवज्ञा की गई उनकी, बोनाफाइड वे। जब गुरु भगवान को प्राप्ति के खिलाफ आदेश देता है तो उसका आदेश आप तोड़ सकते हो, ये उसका अर्थ है। इतना महान भक्त थे बलि महाराज, इतनी बुद्धि थी उनको कि मेरे गुरु भी मुझे रॉन्ग बता रहे हैं अभी इसमें, ही कुड आइडेंटिफाई दैट। ऐसे नहीं कि जो गुरु बोल रहे हैं वो करना चाहिए, ऐसे रियल में हमको चलना चाहिए, लेकिन उसकी इतनी बुद्धि दिव्य थी कि उसको तुरंत समझ में आया कि मेरे गुरु ना दिली दिशा भूल कर रहे हैं, मुझे भटका रहे हैं। तो बोल दिया कि आई एम रेडी टू गो टू हेल, लेकिन जो मेरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं भिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, मैं उनका भिक्षा जरूर दूंगा। तो आई, अरे ब्राह्मण देवता तुम तो इतने ज्ञानी लगते हो, इतने तेज वाले हो, मेरा भाग्य बड़ा कि आप मेरे दरवाजे पे आए हो, क्या चाहिए आप बोलो, मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि आप मेरे यज्ञ में सफल करने के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, यज्ञ की फलश्रुति प्राप्त करने के लिए आप आए हो, आइए बताइए क्या चाहिए आपको। तो बोलते कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले बस, मुझे लगा था आप बड़े बुद्धिमान हो, आप जानते हो आप किससे मांग रहे हो भिक्षा, मैं महाबली हूं, मेरे पास ब्रह्मा लोक से लेकर पाताल लोक तक 14 लोकों के राज्य है मेरे पास, सब मेरे हैं खुद के, आप मांगो एक लोक मांग लो, मैं दे दूंगा, बीच का एक लोक आपका कर दूंगा, आपको क्या चाहिए बोलो, आप 3 पग भूमि क्यों मांगते हो, 3 पग भूमि में क्या होगा? तो उस समय वामन देव ने उनको एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, वो हम सब लोग के लिए बहुत ही सुनने लायक है और अप्लाई करने लायक भी है। वो बोलते हैं देखो, ब्राह्मण को अपनी जरूरत में ही संतुष्ट रहना चाहिए, जितना उसको चाहिए उतना ही लेकर संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया का राज्य मिलेगा तो भी असंतुष्ट रहेगा। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ तो आप हो, आपके पास 3 लोगों का राज्य अभी है, बट फिर भी आप 100 यज्ञ करने जा रहे हो, उसको इंद्र के पद का मान्यता चाहिए आपको, वो होगा तो और कुछ नया निकलेगा उसके बाद में, ब्रह्मा पद आपको चाहिए होगा, ब्रह्मा लोक का राज चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा आपको मालूम, लेकिन आपको जो 3 लोगों का राज्य वो मुमकिन है, प्राप्त है, फिर भी आप असंतुष्ट होकर 100 यज्ञ करने जा रहे हो, तो मुझे क्यों प्रीच कर रहे हो कि 3 पग के बदले में 3 लोक ले लो, मैं तो संतुष्ट हूं। तो मैसेज क्या हमारे लिए, जो आज कर्म के हिसाब से भगवत इच्छा से आपको मिल रहा है उसमें समाधान प्राप्त करना ही सबसे बड़ी धन दौलत है, संतुष्टि। मन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? समाधान, सेटिस्फैक्शन। मन तब शुद्ध होता है जब मन समाधान को प्राप्त करता है, और समाधान आपके हाथ में है। आप अगर आज जो आपके हाथ में है वो लेकर आप ओके हैं, ठीक है, जो भी है, ऑल राइट, आई डोंट माइंड, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं चाहिए, एक फोर व्हीलर है, आई एम ओके विद इट, वो नहीं टू व्हीलर भी ओके, जो भी है, साधन है, जीवन चल रहा है, भजन भगवान का कर सकता हूँ, आई एम फाइन विद इट। वो व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिसके पास लाखों करोड़ रुपए हैं लेकिन फिर भी और चाहिए उसको। धन की व्याख्या क्या क्या की करते शास्त्र में, जिसको आज के प्राप्ति में संतुष्टि है वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण गरीबी में भी संतुष्ट रहता है, रहना चाहिए उसको, रियल ब्राह्मण को। और इसलिए मुझे आप प्रीस मत करना कि तीन पग क्यों लेते हो, ज़्यादा ले लो, मेरे यज्ञ के लिए जितने जरूरत है उतना मैं लेता हूँ। तो बोला ठीक है, तथास्तु, और मंत्र बोल के जलांजलि दे दिया। तो बोला ले लो अभी तीन पग भूमि। तो भगवान ने ऐसा विराट रूप धारण किया, त्रिविक्रम रूप बोलते हैं उसको, पूरा ऐसा रूप धारण किया कि कहते हैं कि बलि ऐसा देखते गए ऊपर ऊपर ऊपर, तो उसका मुकुट नीचे गिर गया, इतना भगवान विशाल हो गए। और फिर बोला कि अभी ले लो कदम, ले लो, मैंने तो वादा तो किया है। तो एक कदम पे पृथ्वी लोक और सारे पाताल लोक, जहाँ तक पाताल लोग है ना, अतल वितल सुतल तला तल महातल पाताल रसातल, सारा प्राप्त कर लिया उन्होंने, नाप लिया पूरा। दूसरा पैर उठाया तो ब्रह्मा लोक तो सब नाप लिया, मतलब बलि का जितना राज्य था, जितनी संपत्ति थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, सब नाप लिया। आप पूछते हैं तीसरा कहाँ रखूं, तो बलि महाराज समझ गए ये तो भगवान है, सब छीन ले मेरे से, सब छीन लिया, ऊपर से गुरु का शाप भी लग गया। फिर भी ऐसे कहते हैं कि वो बड़े आनंद में थे उस समय, तो जीवन मैंने जिसके लिए जिया है उसका फलश्रुति आज हो गया है। उस समय जब दो पग नाप कर सारा प्रॉपर्टी छीन लिया भगवान ने, तो बलि महाराज भिखारी बन गए ना, एक्चुअली इज इट नॉट ट्रू, रियल बेगर, नो पेनी ऑल्सो ऑन हिज नेम, सब कुछ छीन लिया भगवान ने। तो फिर गरुड़ आ गए वहां से, वरुण देव आ गए, और वरुण पास में उन्होंने बलि को अरेस्ट कर लिया, बांध दिया उसको, एक बंदी बना लिया उसको, और उसको घसीट कर लेके जाने लगे। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन दिया है कि जिस समय उसको घसीटा जा रहा था तो बलि अति आनंद का अनुभव कर रहे थे, भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे थे। बाहरी दृष्टि से कृपा दर्द के रूप में आ रही थी, लेकिन आत्मस्तर पे उस कृपा का आनंदमय अनुभव उसको हो रहा था। यही भक्त का लक्षण है। भक्त को जीवन में बाहरी दुख होता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन अंदर से वो आत्मानंद की मस्ती में मस्त रहता है, वो भक्त है। उसको दुनियादारी का सुख और दुख का परिणाम नहीं होता है, सुख से वो आकाश में नहीं उड़ता है और दुख से सर नहीं पटकता है, दोनों में समतल रहता है, दैट इज भक्ति। कि कुछ भी आने दो, आंधी आने, तूफान आने दो, मेरा मेंटल बैलेंस जो है बदलना नहीं चाहिए, दैट इज भक्ति। वो खाली भक्ति में हो सकता है, खाली यज्ञ कर्म कांड पुण्य कर्म करने से नहीं हो सकता है। वो पुण्य कर्म करने से सुख भोगने की आदत बनेगी और दुख आएगा तो दुख होते रहेगा आपको, सुख भोगने की आदत से ज़रा दुख आएगा तो सहन नहीं होगा फिर आपको, बहुत टाइम एसी में रह गए फिर नीचे उतर गए तो बहुत तकलीफ होगी आपको, और नीचे ही वो लेबर लोग काम कर रहे हैं, बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं अपना काम, उतना तकलीफ नहीं हो रही उनको। अगर हम लोग एसी में 24 आवर बैठेंगे और 5 मिनट के लिए वो साइट पे जाएंगे तो आप ऐसा बोलेंगे बाप रे कैसे काम कर रहे हैं लोग इधर, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि सुख की आदत होगी ना बहुत सारी। तो फिर रियलिटी में जाओगे, जो एक्चुअल रियलिटी क्या है वो दुख है, वो सुख की आदत में इल्यूजन में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, और सत्य में आ जाएंगे जो दुख भरा हुआ है, तो फिर असह्य हो जाएगा आपको, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी आपकी। तो बलि महाराज ने सोचा उस समय कि सबसे बुद्धिमान का काम इसमें एक ही है, अगर मेरा अहम, मेरा सर जो है, मेरा पोजिशन, माई आइडेंटिटी, माई ईगो, अगर मैं दान कर दूंगा भगवान को तो जीवन सफल हो जाएगा मेरा। तो उस समय बलि ने अपना सर भगवान को अर्पण कर दिया। और इसके आगे क्या हुआ आप देखो, दुनिया में जो कहानी बताई जाती है ना वो यहाँ खत्म हो जाती है, कि भगवान ने छल किया देवताओं के पक्ष में जाकर छल किया, बलि से सब कुछ छीन करके देवताओं को वापस दे दिया, इंद्र को फिर अपने सिंहासन में बिठा दिया और बलि को दंड देकर पैर से नरक में भेज दिया। ये बताकर हमारी कहानी खत्म होती है, लेकिन भक्तों के लिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। भगवान ने सुतल लोक में उसको भेजा बलि महाराज को, और क्या बोला कि तुम्हारा सुतल लोक जो हुआ ना वो इंद्र के अमरावती से भी बहुत सुंदर होगा। तो सबसे पहली नज़र तो इंद्र की पड़ेगी उसके ऊपर, और सबसे पहले इंद्र ही उस पर आक्रमण करने को आएगा कि अरे मुझसे ज़्यादा, मुझे तो इंद्र बना दिया दोबारा, सब कुछ वापस करा दिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा ऐश्वर्य संपन्न राज्य जो है ना उसको दे दिया सुतल लोक में, तो इसलिए मेरे ही इंद्र से रक्षा करने के लिए मेरे चक्र को मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपके सुतल लोक की रक्षा मेरा चक्र करेगा, ताकि इंद्र की बुरी नज़र पड़ने पर भी उसका वो बिगाड़ नहीं सकेगा कुछ। उसके बाद में वरदान दिया कि तुम कई लाखों साल तक वहां रहोगे और ऐसा ऐश्वर्य का अनुभव करोगे जो इंद्र को भी अनुभव नहीं होगा, और आपका वंश राक्षस का है, राक्षस लोग के साथ में रहोगे, आप परिवार के साथ में रहोगे, लेकिन राक्षस लोगों के संग का परिणाम आपके मति पर बिल्कुल नहीं होगा, आप मेरे भक्ति में बने रहोगे, आराम से आनंद में बने रहोगे, सुख दुख की बात नहीं कर रहा हूं, आनंद में, दिव्य आनंद में, भक्ति के आनंद में चूर रहोगे आप। राक्षसों का परिवार का संग होने पर भी आप पर उसका परिणाम नहीं होगा। आगे सुनिए, आगे बोलते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे सुतल लोक में द्वारपाल बनकर आऊंगा। इमेजिन, ये भगवान गए थे ना उधर, वामन देव चले गए वहां से। अभी देखो जब ये सब लीला हो रही ना, बलि महाराज को दो पैर ले लिए, दो पैर में सब छीन लिया, तो प्रहलाद जी वहां प्रकट हो गए। बलि, भगवान लीला कर रहे हैं मेरे पोते के साथ, क्योंकि उसका पोता है ना वो, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, तो मेरे पोते के साथ में लीला भगवान की हो रही है, इसलिए भगवान वहां प्रकट, बलि प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हो गए। तो भगवान जब उसको बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे लोक में द्वारपाल बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, तो प्रहलाद जी बोलते मैं भी यहां क्या कर रहा हूं, मुझे भी वहां जाना चाहिए। भगवान भी उसको बोलते प्रहलाद तुम भी चलना मेरे साथ, हम दोनों बैठकर वहां पर रहेंगे। तो भगवान नीचे गए हैं सुतल लोक में, और बलि महाराज के दिव्य महल के बाहर दोनों ने बैठकर भगवत चर्चा की है। दरवाजे के महाद्वार के पास दो जगह होती है, वहां पर खोजे खड़े होते हैं, वो वैकुंठ में कौन खड़े होते हैं, जय विजय खड़े होते हैं वो जगह पर, वैसे ही इधर भी दो जगह है, उसमें एक जगह वामन देव बैठे हैं, एक जगह प्रहलाद जी बैठे हैं, और दोनों भक्त के चरित्र का वर्णन करके आनंद ले रहे हैं। तो ये हुआ आषाढ़ एकादशी के दिन, जिस दिन चतुर्मास शुरू होता ना अपना चतुर्मास, आषाढ़ एकादशी, उस दिन ये लीला हुई। तो विष्णु जब चले गए, वामन बनकर नीचे चले गए थे अवतार लेने के लिए, तो लक्ष्मी जी ऊपर इंतजार कर रही कि अवतार लेकर लीला करके आ जाएंगे वापस, तो ये आए नहीं वापस। तो लक्ष्मी जी लौट के आई, तो पता चला कि कहाँ गए भगवान, तो सुतल लोक में गए। तो लक्ष्मी जी वहां गई है और देख रही है कि भगवान रोज एक गेट से दूसरे गेट की ओर भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वाम बलि महाराज किस गेट से प्रवेश करेंगे उनको पता नहीं, आज किसी कई गेट है उनके महल के, तो वो किसी भी गेट से प्रवेश करते, जब मर्जी जब प्रवेश करते, तो इनको बेचारों को पता करना पड़ता है कि आज कौन से गेट से आएंगे, तो इस गेट से वहां जाकर खड़ा होना पड़ता है अटेंशन में। तो लक्ष्मी देवी गई है और बलि महाराज को राखी भेजी है उसने, राखी पूर्णिमा के दिन, और कहते बलि भैया मैं बहन बनकर आपसे आज एक विनती कर रही हूँ, हाँ आप मुझे राखी में एक भेंट देना कि रोज एक फिक्स गेट से ही अंदर आना, ताकि मेरे पति देव को एक फिक्स गेट में खड़ा रहने का आनंद मिलेगा, भागने का कष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं अभी और एक वरदान मांगती हूँ आपसे, इनको भी छोड़ दो, भैया आपको जाने दो अपने घर में। तो कहते बहन जी आप भी रहो, वो भी रहने दो, मुझे अभी उनकी आदत हो गई है इनके साथ रहने का, आप उन बोल रहे हैं कि हम ले जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो उनको भी रहने के लिए मजबूर किया उन्होंने, और 4 महीने वहां पर रहे वो बलि महाराज के साथ। और फिर जब वो एकादशी आई ना, देव उठावनी एकादशी, कार्तिक एकादशी, तभी फिर अपने पति को लेकर वो वापस चली गई वैकुंठ में। ऐसा है, राक्षस कुल में होने पर भी वो एक उत्तम भक्त बने, श्रेष्ठ भक्त बने, देवताओं से भी श्रेष्ठ भक्त बने, क्योंकि देवताओं से भी अधिक कृपा भगवान ने उन पर किया। इसलिए हमको उसमें मैसेज क्या है, हमको मैसेज ये है कि आप ये मत बोलना प्रभु जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, प्रभु जी हम तो गरीब है, अरे हम तो ये कास्ट के हैं, हम वो कास्ट के नहीं है, हमको ये नहीं जमता है, हमको वो नहीं जमता है, हम नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, धनवान हो, ये हो, फलाना हो, कोई बहाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सारे एग्जाम्पल है शास्त्र में, राक्षसोत्तम, दैत्यपति, बलि महाराज, भगवान के इतने कृपा पात्र बने, भगवान ने कृपा किया उन पर, भगवान को मार सकते थे, चलो उद्दंडता कर रहा है राक्षस कर रहा है मार दो उसको, कई राक्षसों को मारा है भगवान ने, इसको मारने में क्या है। लेकिन प्रहलाद को भगवान ने वादा किया था कि तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा मैं, ये तो सेकंड पीढ़ी है उनकी, अभी तो आगे बाकी है बहुत, सेकंड पीढ़ी ना वो विरोचन, पहली पीढ़ी, उसके बाद में उसका दूसरी पीढ़ी बलि महाराज, ऐसे हमारे भगवान है। भगवान कभी भूलते नहीं है अपने वादे को, हम भूल सकते हैं, लेकिन भगवान ने वादा किया था प्रहलाद को, अरे तुम्हें क्या, तुम्हारी 10 पहले पीढ़ी, 10 बाद वाली पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी, सबका उद्धार कर चुका हूं मैं, और होगा उद्धार उनका तुम्हारे केवल होने से, तुम भक्त बने मेरे, तुम्हारे केवल होने से, तुम भक्त बनकर रहे इसी बात से, तुम्हारे 10 पीढ़ी पहले, तुम्हारी पीढ़ी और तुम्हारे आगे की 10 पीढ़ी, सबका उद्धार हो गया है, निश्चिंत रहो आप। और ये लीला देखने के लिए स्वयं प्रहलाद भी आए कि भगवान ने अपना वादा पूरा किया, मेरे पोते को मारा नहीं उन्होंने, कृपा किया उनके ऊपर, इतनी कृपा किया कि मैं भी चलता हूँ उसके पास ही, इतनी कृपा मेरे पोते पर हुई है, मुझसे अधिक हुई है, वो पोते के पास रहने को जाता हूँ, भगवान भी जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ, इसलिए कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, इतने तटपुंजा, मतलब इतना सा धन है हमारे पास, थोड़ा बहुत धन है, उसमें हम लोग इतने आसक्त हैं, हम लोग इतने आसक्त हैं, और उसी का बहाना बना रहे, अभी ये करना है, वो करना है, अभी ये ड्यूटी बाकी है, वो ड्यूटी बाकी है, अभी बोटे को देखना है, उसका एडमिशन होना बाकी है, अभी हस्बैंड को देखना है, अभी पुत्र को देखना है, अभी उसकी शादी करके उसको सेटल करना है, अभी मेरी बहू जो है वो पहली डिलीवरी है, अब मेरी शादी होकर बेटी गई है उसकी फर्स्ट डिलीवरी है, ऐसे कई बहाने करके हम भक्ति को पोस्टपोन करते रहते हैं। यहाँ पर राक्षस बनकर भी भक्ति कर रहा है ना, और सुदामा जैसा आदमी भूख से कांप रहा है, ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डेंजरसली डाउन बिकॉज ऑफ हंगर, और व्यक्ति भी रो नहीं रहा है वो कभी कि भगवान क्या फायदा आपकी दोस्ती करके, खाने को भी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हो, बीवी बोल रही है जाओ जाओ दोस्त को मिल के आओ, कुछ ना कुछ दे के आओ उसके, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाओ जाओ मेरे कहने पर कम से कम जाओ, तो गया वो भगवान को मिलने के लिए, लेकिन मांग नहीं सका भगवान से कुछ, मांगा ही नहीं कुछ, भगवान ने भर भर के दिया उसको, फिर भी भगवान को छोड़ा नहीं उसने कभी, महल बना दिया भगवान ने उसके घर पे झोपड़ी में, लेकिन वो उसी भावना में रहे जैसे पहले झोपड़ी में रहते थे। हाँ, स्वर्ग नरकेशु अपतुल्येशु, उनको स्वर्ग में रखो नरक में रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको भगवान का ध्यान जहाँ पर है वो स्वर्ग में रहो वहाँ का आनंद दे दो उनको या नरक का दुख दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता भक्तों को। शिवजी महाराज पार्वती को बता रहे हैं कि ये विष्णु के भक्त ऐसे होते हैं, उनसे कुछ छीन लो आप या कुछ दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि भगवान के नाम का भगवान का धन उनके पास में इतना प्रचुर मात्रा में है कि दुनिया के स्वर्ग के नरक के दुख सुख की कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कुछ गया कुछ आया क्या फर्क पड़ता है, कुछ जेब से निकालते हुए कुछ गिर गया हु केयर्स, इतना सारा धन है, दो चार नोट गिर गए तो क्या होता है, हवा आ गई गिर गए खत्म, हु केयर्स, वैसे भक्तों की अवस्था होती है। तो हमें, हम जिस भी अवस्था में है, हमको सबको भगवान का भजन करना चाहिए, और बेकार में ये स्वर्ग के पीछे धन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ आपके हाथ में बचने वाला नहीं है, जितना भी आप पसीना बहा रहे हो जितना भी इकट्ठा कर रहे हो एक एक पाई आपको छोड़ के जाना है, नथिंग यू कैन कैरी विथ यू, जिंदगी भर जो आपने मेहनत किया वो सारा मेहनत का फल जो है ना आपको यहीं छोड़ के जाना है, नथिंग यू कैन कैरी, नथिंग, जितना भी आप बोलेंगे नथिंग यू कैन कैरी, लेकिन शरीर के स्तर पर जो भी आपने कमाया है वो शरीर के साथ आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आत्मा के स्तर पर आपने जो भी कमाया है वो आपके आत्मा के साथ जहां आत्मा जाएगी वहां पर जाएगा, और वो है भक्ति, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक धन आध्यात्मिक लेवल पे आपके साथ जाएगा, क्योंकि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर टेम्पररी है, वो छोड़ के आपको जाना है, लेकिन आप आत्मा हो, आपकी यात्रा चलती रहेगी। आत्मा के लेवल पे जो बैगेज आपने इकट्ठा किया है वो आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं इंडिया से आता हूँ तो मेरा फ्लैट लेके आता हूँ क्या यहाँ पर? नहीं, मेरा फ्लैट, मेरा वॉशिंग मशीन, मेरा एसी लेके आता हूँ क्या इधर? नहीं, 30 किलो चेक इन में, 10 किलो हाथ में, उसके ऊपर मुझे यहाँ पर कोई लाने का अलाउड नहीं है। कितना भी गोपी प्रा को कुछ देना है फिर भी 30 किलो हो गया तो हरी बोल, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। वैसे ही आध्यात्मिक बैग में कितना भरा है उतना ही अलाउड है, बाकी जो भी धन इकट्ठा किया है शरीर के सर पर वो आपको यहीं छोड़ के जाना है। कितना भी आपको लेके जाने की इच्छा रहेगी तो ब्लैंकेट लगेगा वो, लेकिन नहीं, वो 30 किलो हो गया अभी, आप छोड़ो उसको, निकाल दो, खाली करो उसको। ये आपको समझ में आया ना तो जीवन धन्य है हमारा, आज से ही धन्य है, कल से ही धन्य है, अगर समझ में आया तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड, करना अंडरस्टैंडिंग के बाद में है। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगा तो करेंगे कि फायदा क्या, वो गलत ही रहेगा सब कुछ। तो स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि व्हाट इज रियलिटी, सत्य क्या है, क्या अमल करेगा, फाइनली व्हाट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, रियलिटी क्या है, वो पता करने के बाद में उस पर हमको चलना है। और उस पर चलेंगे तो यश ही यश है। भगवान सब जगह पर है, भगवान का नाम कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें दिल लगना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, तब जाकर भगवान आपके ही हैं, वो कहीं दूर नहीं है आपसे। उन पर प्रेम करेंगे तो आपके पास ही है वो, क्योंकि उनको छोड़कर किसी से प्रेम करेंगे तो मिले दूर चले जाएंगे आपसे वो। इसलिए आइए सब लोग भगवान का नाम लीजिए और सारे किंतु परंतु छोड़ दीजिए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब छोड़ दीजिए, करना ही है इसको, ये जीवन उसके लिए दिया हुआ है। आगे जाके कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। देवता बनकर भी क्या करेंगे, वापस लौट के आएंगे इधर तड़पते हुए, जैसे वाटर पार्क से बच्चा निकलते वक्त रोते निकले घर जाएगा, सारा एंजॉय करने के बाद भी रोते रोते घर जाएगा कि पप्पा मुझे वापस नहीं जाना है, लेकिन आना तो पड़ेगा उसको। वैसे हम लोग इंद्रलोक में जाएंगे तो भी रोते रोते वापस आ जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, सब टेम्पररी है यहाँ पर। परमानेंट चीज़ के पीछे भागो, जो आपके साथ जा सकता है, आपके साथ रह सकता है, वो चीज़ की प्राप्ति के लिए मेहनत करो। उसी के लिए मनुष्य जीवन दिया है, उसी के लिए इतना बुद्धि दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, स्किल दिया है, उसके लिए दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत समय लिया आपका, बहुत माफी चाहता हूँ आपसे। हरे कृष्णा।
ने बहुत अच्छे से बताया और आध्यात्मिक प्रगति कैसे करनी है और क्या धन कमाना है आपको समझ में आ गया रहेगा, और आप सब लोग उसके लिए कोशिश करेंगे आध्यात्मिक धन प्राप्ति करने के लिए। प्रभु जी ने, प्रभु जी जो है वो राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल है, और जिस तरह से वो कथा कहते हैं, और आपने सब लोगों ने सुना है राधानाथ स्वामी महाराज, तो वो कथा करते हैं जैसे लगता है कि सुखदेव गोस्वामी जी का कथा कर रहे हैं, और उनकी जो शिष्य जो है वो भी उनका ही रिसेम्बल है, उसी तरह से कथा करते हैं, और बहुत ही आनंद आता है उनकी कथा सुनने के लिए। तो उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम लोग सब लोग हरे कृष्ण मंत्र कहेंगे, ताकि वो और